नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 फ्लैटों का लोकार्पण किया। ये टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैट बाबा खड़क सिंह मार्ग के निकट बनाए गए हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से अब तक 350 सांसद आवास बनाए गए हैं।
2014 से अब तक इन फ्लैट्स को मिलाकर करीब 350 सांसद आवास बनाए गए हैं। यानी एक बार ये आवास बन गए तब जनता का भी पैसा बच रहा है, साथ ही 21वीं सदी का भारत जितना विकसित होने के लिए अधीर है उतना ही संवेदनशील भी है।
श्री मोदी ने इस अवसर पर आवासीय परिसर में सिंदूर का पौधा भी लगाया। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय अत्याधुनिक तकनीक और रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया पहल को दिया है। कल बेंगलुरु में एक जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान पूरी दुनिया ने नए भारत का नया चेहरा देखा है।
ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता, सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता, पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं।
प्रधानमंत्री ने तीव्र और बेहतर यात्रा सुविधा के लिए तीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर अजनी से पुणे को भी हरी झंडी दिखाई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राजस्थान के झुंझुनू में 30 लाख से अधिक किसानों को 3,200 करोड़ रुपए से अधिक के फसल बीमा दावे वितरित करेंगे। दावों का भुगतान डिजिटल माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी कर 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाता धोखाधड़ी के उनके आरोपों के संबंध में दस्तावेज मांगे हैं। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से जारी नोटिस में श्री गांधी से कहा गया है कि बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी के अपने आरोपों की पुष्टि के लिए वे दस्तावेज उपलब्ध कराएं ताकि मामले की विस्तृत जांच की जा सके। श्री गांधी ने 7 अगस्त को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी का आरोप लगाया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के उप महानिदेशक आज ईरान का दौरा करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराखची ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य इस वर्ष जून में ईरान की संसद द्वारा अनुमोदित एक नए ढांचे के अंतर्गत भविष्य के सहयोग पर बातचीत करना है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि इस यात्रा के दौरान ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों का कोई निरीक्षण करने की योजना नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं के बाद उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के हर्षिल और धराली क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। एक रिपोर्ट।
हर्षिल में माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। भागीरथी नदी पर बनी झील से पानी निकालने के लिए जल विद्युत निगम की टीम मौके पर मौजूद है। वहीं गंगोत्री राष्ट्रीय मार्ग पर लिमजा गाड़ में बह चुके पुल के स्थान पर बेली ब्रिज का निर्माण पूरा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निजी और सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान के आकलन की प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने आज बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। उधर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन के कारण आवाजाही के लिए बाधित है, जिसे सुचारू करने के प्रयास जारी हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
इस बीच मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर आज मूसलाधार वर्षा की संभावना है। एथलेटिक्स में ओलंपिक विजेता अन्नू रानी ने कल इंडियन ओपन 2025 विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय कॉन्टिनेंटल टूर में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा का खिताब जीता। उधर भारतीय महिला मुक्केबाज निशा और मुस्कान ने कल बैंकॉक में अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।